मेरे प्यारे साथियों नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं सीधे मुख्य विषय पर बात करने जा रहा हूं और आज मैं बात कर रहा हूं कि जो आपके जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर होता है आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं करेंगे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं आपको कोई आदेश दे रहा हूं। आप यह भी बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं आपको एक ऐसी परफेक्ट टेक्निक बता रहा हूं जिससे बेहतर कोई दूसरी टेक्निक है ही नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक आप सॉल्व कर ही रहे होंगे, इससे पहले अगर एग्जाम में बैठे होंगे तब आपने सॉल्व किए होंगे, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होते हैं तब आपने सॉल्व किए ही होंगे, दूसरों ने भी आपको बताया होगा। तो मैं आपसे केवल अपनी बात बताने जा रहा हूं। मुझे अपने स्तर पर यह जो टेक्निक है यह बहुत ही व्यावहारिक लगती है और काफी फायदेमंद भी लगती है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि अब समय आ गया है जब हमें कम से कम इस टॉपिक पर तो बात कर ही लेनी चाहिए। और यह संयोग ही है कि कल इसी टॉपिक के बारे में मुझे कई मेल्स मिले कि सर इस पर बात की जाए। तो दोस्तों, अब मैं सीधे सीधे इस पर आ रहा हूं। जनरल स्टडीज का आपको पेपर मिलेगा, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको मात्र 120 मिनट दिए जाएंगे, मात्र 120 मिनट एक प्रश्न को हल करने के लिए, 1.2 मिनट्स, दैट्स ऑल। और सच पूछिए तो क्वेश्चंस जिस तरीके के होते हैं, प्रश्न लंबे होते हैं या वक्तव्य भी दिया हुआ है तो वक्तव्य थोड़ा सा लंबा है, इसके बाद अगर स्टेटमेंट दिए हुए हैं 3-4 स्टेटमेंट तो वो भी थोड़े थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से जटिल भी होते हैं, और इसके बाद जो ऑप्शंस वाला हिस्सा होता है वो ऑप्शंस वाला हिस्सा भी 1, 2, 3, 3, 1, 2 इस तरह से करके उसे और जटिल बना दिया जाता है। इसका मतलब है कि शुरू से आपको अपने दिमाग में यह धारणा लेकर चलनी है कि वहां समय की तो बहुत कमी है। आप ये मानकर के चलिए कि आप रेगिस्तान का सफर कर रहे हैं, पानी मिलने की संभावना नहीं के बराबर है, आपको समय के विरुद्ध दौड़ लगानी होगी। यू हैव नो टाइम टू थिंक, नो टाइम टू स्टे, रुकने का समय नहीं है, विश्राम करने का समय नहीं है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज को आप तार्किक रूप से लीजिए। तार्किक रूप से मेरे कहने का मतलब है कि ये केवल आपके लिए तो नहीं है, सबके लिए है। और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का जो चरित्र होता है हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि अगर कठिन है तो सबके लिए है, सरल है तो सबके लिए है, 100 क्वेश्चन है सबके लिए है, 120 मिनट है सबके लिए है। तो सीधी सी बात है कि इस सिचुएशन में जो पारंगत होगा, जो लोग अच्छा करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, यही तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। अदरवाइज तो फिर आपके कॉलेज के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें सब 100% पास हो सकते हैं, यहां ऐसा नहीं है। इसीलिए आप अपने दिमाग से ये तथ्य हटा दीजिए कि 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट कम है या ज्यादा है। आपके दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए कि बस है, सो है, खत्म हो गई बात। अब आपको इसके खिलाफ दौड़ लगानी है, इस चुनौती का सामना करना है। तो इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? दोस्तों, मानकर चलिए, पता नहीं आप मेरी बात पर कितना यकीन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये जो चुनौती है ये मूलतः मनोवैज्ञानिक चुनौती है, एक साइकोलॉजिकल चैलेंज है। जब आप खेल के मैदान में उतरते हैं, मान लीजिए कि पहलवानी करने के लिए उतर रहे हैं, मुक्केबाजी करने के लिए उतर रहे हैं, तो वहां दोनों चीजें हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, दोनों एक दूसरे से तो खैर जुड़े ही हुए हैं, लेकिन यहां फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी मायने नहीं रखती जितनी कि मेंटल स्ट्रेंथ मायने रखती है। रेस अगेंस्ट द टाइम के संदर्भ में मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको पैरों से नहीं दौड़ना है, आपको दिमाग से दौड़ना है, यानी कि आपका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए, शरीर तो स्वस्थ रहना ही चाहिए, दिमाग नींद से भरा हुआ न हो। जब प्रश्न देख रहे हैं आप तो उन्हें कम से कम ठीक से देख तो सके, समझ में आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन जो नींद से भरा हुआ मस्तिष्क होगा, जो द्वंद में उलझा हुआ मस्तिष्क होगा, वो पहली बार में ही प्रश्नों को सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि मैंने कल स्पेशली स्वास्थ्य को लेकर के आप लोगों से बातें की हैं, इसकी अनदेखी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसकी अनदेखी करेंगे तो अनजाने में ही आप इसकी भी अनदेखी कर रहे हैं। प्लीज नोट इट डाउन, इसे आप नोट कर लें। जैसे ही आपको पेपर मिलता है अपने को शांत रखिए, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नॉट एट ऑल। जी हां, आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी स्थिरता तो दिखानी ही पड़ेगी, कोई मजाक थोड़ी करने जा रहे हैं आप, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको उस तरह का मस्तिष्क, उस तरह का चरित्र भी तो डेवलप करना पड़ेगा। आने दीजिए पेपर को, मन को बिल्कुल शांत करिए, इधर उधर की बातें सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है जब आएगा तब देखा जाएगा। पेपर आपको जैसे ही मिला और इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ओपन, कि आप खोल लीजिए अपना पेपर, अब आप इत्मीनान के साथ खोलिए। इत्मीनान के साथ का मतलब है नहीं कि बहुत ही लुंज पुंज तरीके से, इत्मीनान के साथ मतलब मस्तिष्क की मैं बात कर रहा हूं, हड़बड़ी में नहीं। अब क्वेश्चन पेपर आप खोलिए और अब आप अपने दिमाग में यह बात बांध लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको अब अपना पेपर सॉल्व करना शुरू कर देना है। ये नहीं कि एक बार पेपर पढ़ लें, बीच बीच में पलट करके देख लें अपनी तसल्ली के लिए, या तसल्ली वसल्ली जैसी कोई चीज काम नहीं करेगी। जो पेपर आया है आया है। आप जैसे ही पहला प्रश्न पढ़ते हैं, हो सकता है कि पहला प्रश्न बहुत कठिन हो या आपके विषय का ही ना हो। जैसे मान लीजिए कि आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं और पहला प्रश्न साइंस का आ गया और वो भी पता लगा कि रॉकेट साइंस का क्वेश्चन है, अब आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है ऐसे समय में, मालूम है ऐसे समय में लगता है, अरे बाप रे ये तो पहला ही प्रश्न नहीं बन रहा है, बाकी के साथ क्या होगा? ऐसा नहीं होता मेरे भैया, बिल्कुल भी नहीं होता। पहला प्रश्न नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, दूसरा बनेगा, दूसरा भी नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, तीसरा बनेगा, तीसरा भी नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपको वह सेट मिला हो जिसकी शुरुआत ही साइंस के क्वेश्चन से हुई है, तो क्या मुसीबत हो गई है? आपका टारगेट कितना स्कोर करने का है? 50% ना, तो 50 क्वेश्चन तो छोड़े जा सकते हैं अगर हम बाकी के 50 पूरी तरह से सही कर लें तो। मैं एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, आदर्शतम स्थिति की बात कर रहा हूं। तो अभी आप घबरा क्यों रहे? अभी तो 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ही आपने पढ़े हैं ना, चलने दीजिए। आपने क्या क्रिकेट के मैच में नहीं देखा है कि शुरू के पता लगा कि 4-5 विकेट फटाफट गिर गए हैं, लेकिन बाद के बैट्समैन ने इतना कमाल किया कि वो मैच जीत गए और लग रहा था कि अब तो हम जीत ही नहीं सकते। शुरू के 3-4 विकेट जो सबसे अच्छे होते हैं बैट्समैन के, वो तो गायब ही हो गए हैं, गिर गए हैं, और मुश्किल से हम 25 रन बना पाए हैं और हमको 100 रन बनाने हैं। ये सच है और इस सच को आपको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के मनोवैज्ञानिक सच आपको वहां ताकत देंगे। बिल्कुल भी मत घबराइए। ऐसे समय में एक थॉट आप और दिमाग में ला सकते हैं कि ठीक है मेरे नहीं बन रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि दूसरों के भी बन रहे हों? आप देखिए कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं घटते घटते कहां तक पहुंच गए हैं। मैं तो इस कट ऑफ मार्क्स को एक तरीके से शर्मनाक स्थिति मानता हूं कि जो सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हों, देश की सर्वोच्च नौकरियों में प्रवेश कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कट ऑफ मार्क्स इतना पुअर है। लेकिन है तो है, कोई बात नहीं, मामला तो सेलेक्ट होने का है, मामला कट ऑफ मार्क्स कितना है ये नहीं है। तो आप अपने दिमाग में इस तरह के कुछ तथ्य को उस समय लेकर के आइए कि ठीक है कठिन है तो सबके लिए है, कोई बात नहीं, अभी ये उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है ना, साइंस मेरे लिए उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, धीरे धीरे मैं हरियाली पगडंडी में आऊंगा, मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, मेरा पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स में भी मैं अच्छा कर लेता हूं, और इन 4 सब्जेक्ट से कम 60 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो ठीक है वहां भी मैं पहुंचूंगा धीरे धीरे। इस बार का पेपर ऐसा नहीं हो गया कि जनरल स्टडीज के नाम पर साइंस ही साइंस पूछ लिया गया है या और कुछ पूछ लिया गया है जो आपसे नहीं बन रहा है। तो इन सच्चाइयों को आप उस समय अपने दिमाग में लेकर के आए, ये जो सच्चाइयां हैं ये आपको ताकत देंगे, आपको स्थिरता देंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे। अब आप पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्रमशः सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए 2-3 तरह की स्थितियां आपके सामने आएंगी, जो कठिन स्थितियां हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में उसका आंसर क्लिक कर गया, जब आप ऑप्शंस देख रहे थे तो उस ऑप्शन में आपको वो ऑप्शन मिल गया ABCD में, तो सीधी सी बात है कि आप उस पर निशान लगा दीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ जाइए। लेकिन याद रखिए, हड़बड़ी मत कीजिएगा। हड़बड़ी कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन देखते हैं और एकदम उत्साह में अरे अरे इसका तो ये आंसर है, और हम देखते हैं कि ऑप्शन में वो आंसर भी है, लेकिन क्या सही में प्रश्न में जो पूछा गया है वो हमारे दिमाग ने सही तरीके से रिसीव किया? क्या जो दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं उन दूसरे ऑप्शंस पर भी हमने ध्यान दिया, अच्छे तरीके से ध्यान दिया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए? तो आपको स्वयं को बहुत स्थिर रखना होगा, बहुत ही सॉलिड रखना होगा, न तो आपको अति उत्साह की चंगुल में फंसना है, ना आपको डिप्रेशन के दलदल में धंसना है। स्थिरता, ये बहुत मायने रखेगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं, अभी तो आपको 115 मिनट की यात्रा और करनी है, और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे थकान होती चली जाएगी। तो आपको अभी अपने आप को तो बहुत ही चुस्त दुरुस्त रखना होगा ना। तो इसीलिए चलिए स्थिरता के साथ चलिए, हड़बड़ा कर कदम मत बढ़ाइए, उससे दोस्तों गड़बड़ी हो जाएगी। आज मैं इतनी ही बात इस विषय पर करूंगा, कल हम लोग इस पर और भी विस्तार से बातें करेंगे। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। हम लोग की जो ऑफलाइन की क्लासेज हैं 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होंगी, इसके लिए वर्धमान जिले के देवंजन दास ने, जो वेस्ट बंगाल के हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो देवंजन दास जी, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, श्रेयांशी जैन, सूरज सिंह और अजय कुमार शर्मा मुंबई से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।